ओम शांति। ग्यारहवीं शताब्दी, एक दिन राजा भोज के दरबार में एक बहुत जटिल समस्या खड़ी हुई, जिसमें एक ब्राह्मण आरोप लगा रहा था किसी पर, एक सुनार पर, कि उसे जो अमूल्य मोती दिए गए थे वो उसने ब्राह्मण के घर नहीं पहुंचाए। समस्या बहुत जटिल थी, क्योंकि जो सुनार था उसने चार झूठे गवाह प्रस्तुत किए थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सारे गवाह जो है वो सच बोल रहे हैं, और ब्राह्मण ने उस लोहार को पैसे या वो कीमती हीरे दिए ही नहीं थे जब वो कहीं बाहर था, और उसे अपने घर जाना था, परंतु ये लोहार, क्योंकि उसका मित्र था, वो भी घर उसी ओर जा रहा था। तो इस तरह से एक जटिल सी समस्या थी, और महाराज भोज ने ये निर्णय दिया कि ब्राह्मण गलत है और वो सुनार जो है वो सही है। तो वो जो ब्राह्मण है वो कहने लगा, ये तो अन्याय है, इससे तो अच्छा होता कि हम गांव के बाहर एक टीले पर जो एक अनपढ़ और गवार सा व्यक्ति है, चरवाहा, वो बहुत अच्छा न्याय करता है, उसके पास जाएंगे। और वो ब्राह्मण वहां से चला जाता है। तो महाराज भोज पूछते हैं कि मेरे ही राज्य में कोई दूसरा भी एक व्यक्ति है, और वो भी अनपढ़ और गवार, जो कि अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रिय हो रहा है, कौन है वो व्यक्ति? तो महाराज भोज भेष बदल कर रात्रि वहां पहुंचते हैं। वो व्यक्ति एक अनपढ़ सा और गवार सा व्यक्ति होता है, जो कि टीले पर बैठता है और वहां बैठकर न्याय की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, और जब टीले से नीचे उतरता है तो एकदम से गवार की तरह होता है, परंतु जैसे ही टीले पर बैठता है अभूतपूर्व शक्तियां उसमें आ जाती है। तो राजा आकर बैठता है और देखता है ये व्यक्ति कैसे न्याय करता है। तो जैसे ही वो चरवाहा उस टीले पर बैठता है, वो चार साक्षी जो होते हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, और वो एक एक से पूछता है कि वो जो अमूल्य मणि थे, अलग अलग करके पूछता है कैसे थे, और हर एक अलग अलग वर्णन करता है। इससे उसे ये पता चलता है कि वो लोहार झूठा है, और ब्राह्मण ने उसे वो हीरे दिए थे, वो अमूल्य मणि, पर इसने वापस नहीं दिए। कहानी तो इस तरह की है, या इसमें और कई जगह पर अलग अलग बताते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। राजा बहुत प्रभावित होता है, और उससे वो बाद में पूछता है कि मुझे भी कुछ इस क्षमता के बारे में समझाओ, कैसे तुमने ये न्याय कर दिया? मैं राजा भोज इसका न्याय नहीं कर पाया, तुमने कैसे कर दिया? वो व्यक्ति कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो गवार हूं, परंतु जैसे ही उस टीले पर बैठता हूं मुझ में न्याय करने की भावना और न्याय करने की शक्ति दोनों आ जाती है। राजा को आश्चर्य लगता है, और राजा कहता है कि इस टीले को खुदवाओ, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ चमत्कार है। उस टीले को खोदते हैं तो वहां से एक सिंहासन निकलता है, और बहुत सुंदर सिंहासन, अभूतपूर्व सिंहासन। उस सिंहासन की सफाई होती है, एक दिन निश्चित होता है राजा का राज्याभिषेक फिर से उस सिंहासन पर करने के लिए। वो दिन समीप आता है, और एक दिन राजा उस सिंहासन की तरफ बढ़ता है। जैसा ही सिंहासन की तरफ बढ़ता है, उस सिंहासन में पुतलियां होती है बहुत सारी। अचानक एक पुतली आती है, जीवंत हो जाती है, और राजा भोज से कहती है, रुको, कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये किसका सिंहासन है? ये राजा सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है। यदि उसके जैसी योग्यता है, यदि उसके जैसा साहस है, यदि उसके जैसे दानवीर, शूरवीर, पराक्रमी हो, तो ही इस सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी होंगे। और वो पुतली, पहली पुतली, उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी राजा सम्राट विक्रमादित्य की। यदि ऐसा ही शौर्य और ऐसा ही साहस तुम में है, तो ही तुम इस सिंहासन पर आरूढ़ हो सकोगे। इस तरह से एक एक पुतली जीवंत होती है। दूसरे दिन फिर राजा आता है बैठने के लिए, परंतु वो पुतली फिर रोकती उसे और राजा भोज वापस चला जाता है। तीसरे दिन फिर ऐसा ही, चौथे दिन ऐसा ही, ऐसा टोटल कितना दिन? 32। इस कहानी को भारत में सिंहासन 32 सी कहा जाता है। सिंहासन किसका था? सम्राट विक्रमादित्य का। इस सिंहासन पर बैठने के लिए वो 32 पुतलियां 32 कहानियां सुनाती है, और एक एक कहानी में महाराजा विक्रमादित्य की शूरवीरता का बखान है। आज की अव्यक्तवाणी सुबह की, ऐसे ही एक सिंहासन का वर्णन बाबा ने किया है। वो सिंहासन किसका है? किसका सिंहासन है? वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। ये किसका है? इस सृष्टि के आदि पिता का यह सिंहासन है। और इस सिंहासन पर बैठने के लिए, और इस सिंहासन का नाम है सर्वंश त्याग का सिंहासन, सर्वंश त्यागी का सिंहासन। तो जैसे उस सिंहासन पर कितनी पुतलियां थी? 32 पुतलियां। और हर बार एक एक पुतली ने राजा से कहा, राजा कहां जा रहे हो? राजा भोज, जानते हो ये किसका सिंहासन है? ये सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन है। यदि उसके जैसा पराक्रम है तो ही चढ़ना, वरना पैर अपने पीछे करो। हर दिन जब वो स्वयं को देखता है और स्वयं की तुलना करता है सम्राट विक्रमादित्य के पराक्रम से, तो कदम पीछे हट जाते हैं। सर्वंश त्याग का यह सिंहासन, उसमें भी 32 पुतलियां हैं, जो कि आज की मुरली में बाबा ने वर्णन की है। और हम सभी कौन है फिर? कौन? चरवाहे नहीं है हम? कौन है? हम भी चल रहे हैं उस सिंहासन पर बैठने के लिए, परंतु जैसे ही बैठने जाए तो पहली पुतली जीवंत होती है। पीछे से चालू करेंगे 32वीं पुतली से, और फिर धीरे धीरे पहली पुतली तक आएंगे। तो हम जब बैठने जाएंगे इस सिंहासन पर, तो वो पुतली हमसे क्या कहेगी? रुको, हे राजा भोज, कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये किसका सिंहासन है? ये किसका सिंहासन है? इस सृष्टि के आदि पिता का सिंहासन है। यदि इस पे बैठना है, यदि सर्वंश त्याग के सिंहासन पर बैठना है, तो बहुगुण होना चाहिए, जो कि किसमें था? इस आदि पिता में था। यदि वो गुण न हो तो इस पे तुम नहीं बैठ सकते। उस कहानी में दिखाया है 32 पुतलियों तक राजा भोज हर दिन पीछे मुड़कर चला जाता है, और लास्ट में वो सारी पुतलियां खुश हो जाती है। इसलिए नहीं कि कि उसमें वो गुण नहीं है, इसलिए कि कितना निरंकारी है बेचारा। मान तो रहा है कि मुझ में कुछ भी नहीं है इनमें से, परंतु राजा भोज के जीवन में भी दिखाया है वही सारी दिव्यता और वही सारी कहानियां जो विक्रमादित्य के जीवन में थी, शायद उसी की आत्मा होगी। क्योंकि विक्रमादित्य ईसा के 50 या 100 वर्ष पूर्व हुआ है और भोज 12वीं शताब्दी में। तो हम चढ़ने लगे, जाने लगे इस सिंहासन की ओर, और पहली पुतली जीवंत तो हुई और उसने क्या कहा, कौन बैठ सकता है इसमें, इस सृष्टि का जो आदि पिता है उसमें जो एक गुण था, पीछे से शुरुआत करेंगे, ऐसी 32 बातों की चर्चा करेंगे। तो सबसे अंतिम पुतली से चालू करेंगे जो कि आज का स्लोगन है, जीते जी मरना। जो जीते जी मरा है, अर्थात किससे मरना, संसार और संस्कार से, इस पुरानी दुनिया से, इस पुराने संसार से और पुराने संस्कारों से, ऐसे जो जीते जी मरा है, यदि ये गुण तुम में है तो ही है राजा भोज चढ़ना, नहीं तो कदम पीछे। जीवंत है परंतु इस संसार से जैसे मर चुके हैं, जीवंत है परंतु पुरानी दुनिया हमारे किसी काम की नहीं। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, मजा नहीं है किसमें, दुनिया में और देह में। इस पुरानी दुनिया में और इस पुरानी देह में कोई मजा नहीं है। कितना अच्छा वहां वाक्य है, वैराग उत्पन्न करने वाला है, मर जाना। जैसे ही मर जाते हैं मुक्ति हो जाती है। किसी राजा ने अपने घर में एक छोटा सा पंछी पाल रखा था, कबूतर, और उस कबूतर बहुत दुखी था पिंजरे में सोने के, और चिल्लाते रहता था, सब लोग सोचते थे गा रहा है। एक दिन कोई महात्मा आए थे गांव में, तो राजा उससे मिलने जा रहा था, राजा का बेटा भी मिलने जा रहा था छोटा। उस तोते ने, उस पक्षी ने उस राजा के बेटे से कहा कि उस महात्मा से पूछना मेरे मुक्ति का मार्ग क्या है। तो छोटा सा बच्चा जाकर महात्मा से पूछता है कि हमारे घर में एक कबूतर है, उसने पूछा है उसकी मुक्ति का मार्ग क्या है। तो वो महात्मा उसकी बात सुनते हैं और बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और कुछ कहते नहीं। लोगों को तो लगता है जैसे शरीर छोड़ दिया, शायद छोड़ भी दिया हो, पता नहीं। वो लड़का छोटा सा राजकुमार महल में आता है और उस कबूतर से कहता है कि जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा महात्मा जी गिर पड़े, मूर्छित हो गए, कुछ कहा ही नहीं, उत्तर दिया ही नहीं। कबूतर कहता है मुझे उत्तर मिल गया। दूसरे दिन वो गिर जाता है, सबको लगता है कि कबूतर मर गया। दरवाजा खोला जाता है निकालने के लिए, बाहर निकालते हैं और वो आकाश में। मर जाओ तो मुक्ति, मुक्ति का मार्ग मरना, जीते जी मरना, इस देह में रहते ही मरना। तो पहली पुतली जीवंत हुई और उसने क्या कहा हमसे, राजा भोज रुको, कहां जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, जीते जी मरने का गुण, यदि ये नहीं है जो कि ब्रह्मा में था तो तुम भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। पहला, दूसरी पुतली जीवंत हुई, तपस्या की पुतली थी, और जैसे ही जीवंत हुई उसने कहा कि राजा रुको, मैं तपस्या की पुतली हूं। पांच विकार दुनिया वालों के लिए क्या है? जहरीले सांप, और तुम्हारे लिए गले का हार। विकारों को इस तरह जीत लिया है अपनी तपस्या से, जिसका स्वरूप शंकर है। सांपों की चर्चा बाबा ने तीन बारी अलग अलग मुरलियों में की है, तीन स्वरूपों में। एक सांप जिस पर कृष्ण नाच रहा है, कालिया नाग, तो कालिया नाग किसका प्रतीक है? विकारों का प्रतीक है। उस पर इतनी सहजता से विजय हो गई है कि नाच हो रहा है, वो स्थिति स्टेज ही स्थिति है। पहला उदाहरण। दूसरा, शेष शैया विष्णु लेटा हुआ है, तूफान आ रहा है, शेषनाग जहरीली वायु निकल रही है, परंतु वो निश्चिंत है, स्थिर है, सुखासन अनंतासन में लेटा पड़ा है। कुछ खबर नहीं उसे क्या हो रहा है, पर फिर भी सब जानता है, अप्रभावित, अनअफेक्टेड। दूसरा, तीसरा, शंकर जी के गले में हार, किसका यादगार? हमारा। तो हम सभी कौन है? तपस्वी स्वरूप। यदि अपनी तपस्या से विकारों को वश में नहीं किया है, यदि अपनी तपस्या से विकार समाप्त नहीं हुए हैं, अधीन नहीं हो गए हमारे, तो इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। बाबा ने मुरलियों में दो बातें कही है हमेशा। एक तो विकारों को दुश्मन कहा है, माया दुश्मन रावण, पर एक बात जो उससे भी अधिक अच्छी कही है वो है, विकारों से लड़ना नहीं, उनसे परे चले जाना। एक है उनसे लड़ना, जहां लड़ना होता है वहां द्वंद्व होता है, योद्धा की अवस्था है वो। एक दूसरी अवस्था है जिसमें लड़ नहीं रहे, विष्णु लड़ नहीं रहा है, शंकर लड़ नहीं रहा है, श्री कृष्ण लड़ नहीं रहा है, आनंद मगन अवस्था है तीनों की, और तीनों ही जगह सांप है, परंतु सांप अपना प्रभाव अब नहीं डाल रहे हैं। तो दूसरी पुतली कौन सी है? तप की पुतली, तपस्या की पुतली, दूसरी कहो या पीछे से हम चालू कर रहे हैं 31। उसके बाद 30, ये पुतली है कमल की पुतली, कमलासन की पुतली। प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे रहना है? स्पर्श निर्लिप्त, पानी और कीचड़ स्पर्श ना करे, लौकिक संबंध ना रहे। कौन से संबंध हो जाए वो सारे? अलौकिक संबंध और पारलौकिक संबंधों में परिवर्तन हो जाए। घर ना रहे, क्या बन जाए? सेवा स्थान बन जाए। देहिक संबंध नहीं, देह के संबंध नहीं, रूह के संबंध, सेवा के संबंध बन जाए। तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी संबंधों में संपूर्ण परिवर्तन, ये पता ही न चले कौन कौन है। जैसे ये एक सर्वंश त्याग है, त्याग के 7 अध्याय बाबा ने गिनाए हैं। सबसे पहली मुरली थी त्याग पर, देह भान भान का त्याग। दूसरी मुरली थी अधिकारी और दास आत्माओं की निशानियां। तीसरी मुरली थी लौकिक अलौकिक संबंधों का त्याग। चौथी मुरली थी व्यर्थ का त्याग। पांचवी मुरली थी त्याग, उसमें तीनों ही बातें थी, पर मुख्य रूप से चर्चा त्याग और महात्याग की थी। बाबा ने कहा था सर्वंश त्यागी, बाद में बताएंगे, और बात के बीच में और तीन दूसरी नई नई बातें आ गई। बीच में लोकलाज आ गया और बीच में दरबार आ गया और एक तीसरी मुरली आई, और उसके बाद अभी वो कोर्स पूरा हो रहा है, 7वां सर्वंश त्याग का। तो 30 नंबर की पुतली कौन सी है? कमलासन। यदि जीवन कमलवत है, निर्लिप्त है, अलिप्त है, संसार के प्रभाव में नहीं है, संसार में जी रहे परंतु संसार हम में नहीं है, टू बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में है परंतु संसार के नहीं है, ये तपस्या है, ये एक साधना है। उदाहरण है बहुत सुंदर, भारत में स्वामी राम हुए हैं, स्वामी रामतीर्थ विदेश गए, पंजाब से थे, विदेश की यात्रा है कि पहले जन्म पंजाब में हुआ, मैथमेटिक्स के बहुत स्कॉलर थे, प्रोफेसर थे लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में। 1897 में एक छोटी सी मुलाकात विवेकानंद से हुई, उसके बाद में कुछ समय बाद वैराग हुआ और अपने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सन्यासी बन गए, जापान गए, वहां से अमेरिका गए, भारत का संदेश योग का सुनाया, भारत वापस आए, बहुत लेक्चर्स दिए यहां वहां, और बाद में लेक्चर से भी वैराग आ गया और हिमालय चले गए। 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। जब वो हिमालय में थे, उनका जो शिष्य था, प्रमुख शिष्य पुंछी, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि एक दिन उनकी पत्नी उनसे मिलने आई, जिसको उन्होंने छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया था, बच्चों को भी छोड़ दिया था। पुंछी लिखता है कि मैंने रामतीर्थ को, मेरे गुरु को, इतने हजारों लोगों को मिलते हुए देखा, परंतु जैसे ही मैंने उनको कहा कि आपकी पत्नी आपसे मिलने आई है, एकदम भयभीत हो गए, डर गए, और उन्होंने कहा मुझे उससे नहीं मिलना है। तो पुंछी ने कहा, मैंने आपको हजारों लोगों से मिलते देखा, ये भी एक आत्मा है, ये भी एक स्त्री है, इससे आपको क्यों नहीं मिलना है? बेचारी इतना दूर पंजाब से आई है, कभी उसने कुछ मांगा नहीं आपसे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, दरिद्र है, बच्चे हैं, और आज मिलने आए तो आप कहते हो कि इससे मुझे नहीं मिलना, डर है, खतरा है। किस चीज का खतरा है? कुछ तो है गड़बड़। दुनिया को तो छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, वैरागी है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ये आत्मा से मिलना नहीं है। शायद डर है, शायद उस आसक्ति है सूक्ष्म, कहीं वो सब प्रकट ना हो जाए फिर से मन में जो कुछ भरा हुआ है। परंतु जैसे ही शिष्य ने ये बात कही, उन्होंने कहा शायद कोई भय है, पर मैं आज इसे भी जीत लूंगा, बुलाओ उसे। उन्होंने पुंछी ने कहा कि वो आपके चरण बस छूना चाहती है, शाम को चली जाएगी। उसने कहा आने दो, छूने दो मेरे चरण, मैं भी उसके चरण छूंगा। तो वो आती है, वार्तालाप होता है, वो उसके चरण छूती है, वो उसके चरण छूते हैं, और वो वहां से विदा होती है। उसके बाद पुंछी ने लिखा कि आई हैव सीन माई मास्टर एज फियरलेस पर्सन, फर्स्ट टाइम अ न्यू एनलाइटमेंट। जैसे कि एक न्यू एनलाइटमेंट, उसके एक नया रूहानियत उसके चेहरे में आ गई, जैसे एक ही भय था, एक ही डर था इस संबंध का, और जैसे ही वो गई, वो भय समाप्त हो गया। वास्तव में संसार में जो संन्यास इसी तरह का था। अभी ब्रह्मा के जीवन को यदि देखो तो बाबा ने जैसे ही परम ज्ञान प्राप्त हुआ, एक मार्ग ये भी था सबको छोड़ दो, ये सब तो बाधा है, संसार में फंसे हुए हैं, गुरु और गोसाई और इनके बंधनों में है, परंतु वो छोड़ के नहीं गए, वहीं रहे, क्योंकि छोड़ के जाना ये एक नया बंधन है, वो ऊपर ऊपर का होगा, वो पलायनवाद होगा। इसके लिए 30 नंबर की पुतली कौन सी है? कमल आसन, कमल वाली पुतली, कमल आसन समान जीवन हो, निर्लिप्त अलिप्त, बार बार ये शब्द हम कह रहे हैं, संसार लिप्त ना हो हम में। ट्वेंटी नाइन्थ 29, ये पुतली है स्वमान की। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सबने सुना है और हजारों बार सुना है। बाबा ने कहा है ब्राह्मण अर्थात समर्थ आत्मा, समर्थ अर्थात जहां पर व्यर्थ ना हो, जहां पर किचड़ा ना हो। जैसे उदाहरण दिया सूर्य का, जैसे सूर्य प्रकाश देता है, अंधकार मिटाता है और किचड़े को भस्म करता है, वैसे ही तुम्हें भी क्या करना है? व्यर्थ को भस्म करना है, अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना है। किस समान में स्थित होकर? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। यदि ये न कर सके तो क्या कहेंगे? बाप शक्तिवान और बच्चे कमजोर, अच्छा नहीं लगता है, शोभता नहीं है, ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो निरंतर इस स्वमान का अभ्यास करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं समर्थ आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बलशाली आत्मा हूं, मैं बलवान आत्मा हूं, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, पुराने संस्कार से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, वायुमंडल से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, इस संसार की मैं सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हूं। कोई भी परिस्थिति मेरे सामने बड़ी नहीं है। केवल रटना नहीं, परंतु उसका विस्तार करना, उसका चिंतन करना, उसके अर्थ स्वरूप में टिकना, ये समान है। तो हे राजा भोज, यदि इस समान में स्थित हो तो ही सम्राट विक्रमादित्य का ये जो सिंहासन है, एक जन्म बाबा का शायद यही था, उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य। तो चेक करना है। उसके बाद 28वीं पुतली पंछी, 28वीं पुतली पंछी। मुरली याद है पुरानी, छोड़ो तो छूटे। 21 नवंबर 1981 बाबा ने उस मुरली में, बाप दादा इधर खड़े थे और सामने एक झाड़ था, एक उंगली पर पंछी था, एक कंधों पर था, कुछ घूम रहे थे आसपास। मुरली याद है ना, छोड़ो तो छूटो। एक झाड़ सामने था, बहुत सुंदर अलौकिक वृक्ष था। उस वृक्ष में तीन प्रकार के पक्षी थे। कौन कौन से? छोड़ो तो छूटे, एक पक्षी थे कमजोर पक्षी, एक थे चतुर पक्षी और तीसरे थे भोले पक्षी, जिन्हें ये ही नहीं पता कि छूटना भी है। चतुर डाली को भी पकड़ के थे और इधर भी आना चाहते थे बाप के पास, और कमजोर चाहते तो थे परंतु उड़ नहीं पाते थे। उसमें बाबा ने कहा था छोड़ो तो छूटो। पकड़ा किसने है? तुमने ही पकड़ रखा है। यहां पर बाबा क्या कह रहे हैं? तोता नहीं बनना है। जो भी डालिया है, कौन कौन सी डालिया गिनाई बाबा ने? सोने की डालिया कौन कौन सी? मैं, मेरा, मेरा मान, मेरा शान, मेरी शान, मेरा नाम, मेरा सेंटर, सारी हद की जो भी बातें हैं मैं वाली, उन सबको क्या करो? छोड़ो। मेरा देश, मेरा सेंटर, मेरी भाषा, मेरा राज्य, मेरा राष्ट्र, सब कुछ आ गया उसमें, सब अपने हैं, सब हमारे हैं, या फिर कोई भी हमारा नहीं है, दोनों भी चीजें सही है। तो 28वीं पुतली कौन सी है? पंछी। तो हे राजा भोज, यदि डाली को पकड़ के हो, यदि लोहे की डालियां छोड़ दी, लोहे की जंजीरें छोड़ दी, परंतु हीरो की, सोने की पकड़ी हो, तो जो सीता का हाल हुआ वही तुम्हारा होगा। सत्ताईसवीं पुतली भोग। एक प्रश्न है जो सबके चिंतन के लिए है। तुम जब भोग लगाते हो तो संदेशिया भोग लेकर ऊपर जाती है, बाप कहां भोग लेकर जाएगा? आज की मुरली में प्रश्न है। तुम स्वयं को ऑफर करो, अर्पण करो, भोग लगाओ। तीन शब्द कहे हैं। तुम किसका भोग लगाओ? स्वयं का भोग लगाओ। भोग लगाओ, ऑफर करो, समर्पण करो। किसको? स्वयं को। स्वयं ही बैठ जाना है थाली में भोग की, ठीक है माता है? स्वयं ही भोग की थाली में बैठकर ऊपर लेके कौन जाएगा? अभी ये दूसरा प्रश्न है। कोई दूसरी माता ढूंढनी पड़ेगी, कोई दूसरी संदेशी। अच्छा, बाबा को बुला लेंगे। इतनी भारी थाली ऊपर नहीं जाएगी तो वो नीचे आ सकता है, तो बाबा को बुला लेंगे कि आ जाओ, भोग तैयार है। स्वयं का भोग लगाना अर्थात क्या? हाँ, दूसरा और एक शब्द जोड़ा है बाबा ने उसमें, संपन्न होकर फिर भोग लगाओ, अदरवाइज रिजेक्टेड। भोग लगाना अर्थात क्या? स्वयं का, स्वयं को ऑफर करो, स्वयं का भोग लगाओ, स्वयं का समर्पण करो। स्वयं अर्थात मैं, इस मैं का भोग लगाना है, इस मैं को मिटाना, यही वास्तव में भोग लगाना है। स्वयं को संपन्न बनाना, यही वास्तव में भोग लगाना है। इस यज्ञ की वेदी में स्वयं को अर्पित कर देना, यही भोग लगाना है। एक राजा एक साधु के पास पहुंचा और कहा कि मुझे भगवान से मिला दो। साधु ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके सिवा तुम नहीं मिल सकते। राजा गया और अपना सर्वस्व छोड़कर आ गया, सब कुछ गरीबों और दरिद्रों में बांट दिया। वापस पहुंचा, गुरु ने कहा कि अब भी तुम बहुत कुछ लिए हुए हो, कुछ भी नहीं छोड़ा है तुमने। मैं तुम्हें शिक्षा तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम सब कुछ छोड़ नहीं देते। अब आ गए हो तो अब यहीं रहो और यहां पर सेवा करो। और सेवा उस राजा को दी गई। आश्रम का जो कूड़ा करकट है वो रोज वहां से लेके गांव के बाहर जाकर फेंकना, ये काम दिया गया। सभी शिष्यों ने कहा, ये थोड़ा ज्यादा ही कठोरता हो गई, आखिर हमारा राजा है। गुरु ने कहा, यही इसकी परीक्षा है। 15 दिन में बीच में एक बार जब राजा वो टोकरी लेकर जा रहा था, एक व्यक्ति उससे टकराया, तो राजा ने उससे कहा, क्या दिखाई नहीं देता है? खबर गुरु तक भी पहुंच गई कि ऐसा हुआ है, तो गुरु ने कहा कि अभी टाइम है। शिष्यों ने कहा, और क्या, अभी परीक्षा लेनी है इसकी? गुरु ने कहा, अभी टाइम है। 15 दिन में ऐसे ही जब वो सिर पर लेके जा रहा था, एक दूसरा व्यक्ति टकराया। तब तक राजा ने थोड़ा आत्मचिंतन किया। इस बार जब दूसरा व्यक्ति टकराया, टोकरा नीचे गिरा, तो राजा ने उसके कुछ कहा नहीं, परंतु ऐसे देखा कि उन आंखों ने ही बहुत कुछ कह दिया। गुरु तक बात पहुंची, गुरु ने कहा, अब भी टाइम है, अभी भी राजा पूरा तैयार नहीं है। 15 दिन के बाद फिर से एक व्यक्ति टकराया, राजा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा भी नहीं, अपना जो भी सामान था गिरा वो सारा टोकरी में भरा और चुपचाप निकल गया। गुरु ने कहा अब तैयारी हो चुकी है ज्ञान लेने के लिए। अब जो मैं था इतना बड़ा बैठा हुआ वो हटा है। जब ऐसी तैयारी होगी तब भगवान को पाया जा सकता है। जहां मैं है वहां वो नहीं, दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। तो स्वयं को भोग लगाना अर्थात क्या, मैं को मिटाना, अपने मैं की चेकिंग, उस अहंकार को मिटाना। यह था 27वीं पुतली। उसके बाद 26वीं पुतली आई और उसने कहा मैं कौन हूं। उसने भी एक कहानी सुनाई कि ऐसे संपन्न वृक्ष बने हो जिसमें संपन्नता का फल हो, प्रत्यक्ष फल हो, और वो खाने के बाद मन कैसा हो, दुरुस्त, मन कैसा हो, कोई बीमारी नहीं, मन कैसा हो, मनमना भव हो, और ऐसा जब मन हो तब एक दूसरी अवस्था आती है जिसको बाबा ने क्या कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। उसको क्या कहा बाबा ने, इच्छा मात्रम अविद्या। एक शब्द आपने देखा होगा केवल यहीं पर बाबा ने अविद्या शब्द का प्रयोग किया है मुरलियों में। बंधनों से मुक्ति कहा है, विकारों से मुक्ति कहा है, पर इच्छाओं से मुक्ति नहीं कहा है। इच्छाओं के लिए क्या कहा, अविद्या, इग्नोरेंस ऑफ डिजायर्स, क्योंकि इच्छा कैसी भी हो अपने साथ में दुख जरूर लाती है। इसके लिए ऐसी अवस्था तक पहुंचो, इतने संपन्न हो जाओ, इतने अविनाशी वो वृक्ष समान हो जाओ कि जिसमें संपन्न और प्रत्यक्ष फल लगे हो, कि इच्छाओं से क्या हो जाए, अविद्या हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं कहा इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, बाकी सब चीजों से, व्यर्थ से मुक्त, विकारों से मुक्त, निगेटिव से मुक्त, बंधनों से मुक्त, पर इच्छाओं के लिए क्या कहा, अविद्या। जहां जहां इच्छा होगी, यहां तक कि अच्छी इच्छाएं भी, कोई भी इच्छा अपने साथ दुख को ही लाती है। इसके लिए हम आज सोच रहे थे कि कितना सुंदर बाबा ने यह प्रयोग किया है, हमेशा इच्छाओं के लिए ऐसी अवस्था कि जहां इच्छाओं का पता ही नहीं है, और वही वास्तव में अवस्था है जब हम इच्छाओं से मुक्त है। संघर्ष नहीं है उसमें, स्वतः ही ऐसी अवस्था में पहुंच गए जैसे ब्राह्मण बनते ही किसी को ऐसा लगता है कि बाहर बहुत अच्छी जिलेबी बनी है, थोड़ी जाके खा लूं, या संघर्ष करते हैं जब मार्केट से गुजरते, उधर देखना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल देखना नहीं है, देखेंगे तो कुछ हो जाएगा, हलचल, ऐसा किस किस को होता है, अंदर संघर्ष चलता है, वो रास्ते से नहीं जाना है, हलवाई की दुकान उधर है, देखते ही कुछ, तो ये कौन सी अवस्था है, ये इच्छा मात्रम, जैसे वो इच्छा ही समाप्त हो गई है, जैसे ये यहां हुआ वैसे ही विकारों के संबंधित भी हो जाए, तो व्यर्थ के लिए भी ऐसा ही हो जाए, निगेटिव के लिए भी ऐसा ही हो जाए, ऐसी अवस्था तक, इसलिए वहां संघर्ष नहीं करे, ऊपर उठ चुके हैं। उसी तरह ऐसी अवस्था को पाना है जो सांसारिक इच्छाओं से स्वतः ही ऊपर उठ जाए। इच्छा मात्रम अविद्या, चिंतन के लिए बहुत सुंदर टॉपिक है। क्या हम करें कि जिससे ऐसी अवस्था है, मुक्ति नहीं अविद्या, संघर्ष नहीं परे जाना, टू गो बियॉन्ड डिजायर्स। पाश्चात्य जगत में लियो टॉल्स्टॉय हुआ है रूस में, उसने बहुत सुंदर एक जगह लिखा है एक टेलर के बारे में। वो जो टेलर था 30 साल से टेलरिंग करता था और गरीब था, इसके लिए उसने एक आदत बन गई थी महीने में एक लॉटरी खरीदना, हर महीने में 30 साल तक लॉटरी खरीदता था। बाद में तो ये भी भूल गया कि लॉटरी किस लिए खरीद रहा हूं, क्योंकि आदत पड़ गई थी, रूटीन बराबर एक तारीख आई जाके लॉटरी खरीदना। और एक दिन अचानक ऐसे हो गया एक बहुत बड़ी कार, बहुत कीमती कार उसके घर के सामने आके रुकी। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। वो इतना खुश हो गया, इतना खुश है क्या करूं और क्या नहीं करूं। वो तो भूल ही चुका था लॉटरी के बारे में, वो तो बस खरीदना और रख देना, खरीदना और रख देना। लॉटरी लग दी, उसने जो पुराना दुकान और घर था उसको ताला लगा दिया और चाबी जो थी कुएं में फेंक दी और नया घर खरीदा। सब कुछ नया, वैभव, संपत्ति, सब कुछ। 1 साल तक उसने वो सब कुछ किया जो उसने किया नहीं था, यहां तक कि व्यभिचार, सब कुछ। और 1 साल में उसने जितने पैसे कमाए थे वो सारे खर्च हो गए और वो 1 साल में इतना बूढ़ा हो गया था जितना कि 10 साल में नहीं हुआ होगा। उसके शरीर पर इतना असर हो चुका था भोग और विलास का। और फिर वो ढूंढने लगा वो चाबी कहां है पुराने घर की, कुएं में कूदा। मुश्किल से लोगों ने निकाला पर वो चाबी लेकर आया कुएं से बाहर और फिर अपनी पुरानी दुकान और टेलरिंग की शॉप फिर से चालू की। और फिर से वही क्रम, हर महीने में जाकर लॉटरी खरीदना चालू हो गया। और एक दिन अचानक फिर एक दिन वही कार घर के सामने रुकी और एक व्यक्ति आया और उसने कहा तुम्हें लॉटरी लग गई है। और फिर उसने कहा, और वहां पर कहानी पूरी होती है, ओ नो, फिर से अब वही सब कुछ होगा, इच्छाएं जो है वो दुष्पूर है, कभी पूरी न होने वाली, समुद्र है, लहरों की तरह है, एक लहर आती है फिर दूसरी लहर, तीसरी लहर। जैसी एक इच्छा को पूरा करो और जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, वो व्यर्थ हो जाती है, अब दूसरी चाहिए। इसके लिए बाबा क्या कह रहे, ऐसे संपन्न वृक्ष बन जाओ, ऐसे उसके संपन्न फल हो कि मन बीमार ना हो, मन दुरुस्त हो, मन कैसा हो, मन मना भव हो। मन मना भव वास्तव में वह अवस्था है जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या स्वतः ही अवतरित होता है। संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं की, स्वतः ही इच्छा ही नहीं रही है, वो ऊपर उठ चुके। तो ये कितने नंबर की पुतली थी, 26। 25 नंबर की पुतली कौन बताएगा, मुरली पढ़ी है सभी ने, पर आप कहेंगे हमने तो ऊपर से पढ़ी थी, ये नीचे से चालू हो रहा है 25 एक रस, एक मत और एक परिवार, एक परिवार का एक कार्य। तो हे राजा भोज, ऐसे यदि एक मत हो तो ही चढ़ना सिंहासन पर, ऐसे यदि एक परिवार क्या एक कार्य हो, यह भावना हो तो ही चढ़ना, यदि एक रस अवस्था हो तो ही इस सिंहासन पर चढ़ना, वरना अपने कदम पीछे करो। 25वीं। उसके बाद है 24वीं पुतली। 24वीं पुतली कौन सी, आधार मूर्त, बेहद उन्नति के आधार मूर्त, बेहद कार्य के आधार मूर्त। ये नहीं कि ये किसी और का कार्य है, किसी और बहन का है, किसी और स्थान का है, परंतु क्या सोचना, ये बेहद विश्व का, बेहद कल्याण का कार्य है, निमित्त मैं हूं। इसकी कमजोरी नहीं परंतु परिवार की कमजोरी है, मेरे परिवार की कमजोरी है। तो इस परिवार के हर आत्मा के उन्नति के लिए प्रयत्न करना, स्वयं को जिम्मेवार समझना, विश्व कल्याण का ये भावना रखना। तो ये पुतली कौन सी है, 24वीं, विश्व बेहद उन्नति के आधार मूर्त। केवल स्व की उन्नति नहीं, केवल खुद को आगे नहीं बढ़ना है परंतु सबको लेकर आगे बढ़ना है। एक है खुद को आगे बढ़ाना, सबसे अलग हो जाना, एकांत में चले जाना, सॉलिट्यूड, और योग करना, तपस्या करना, चिंतन करना बस, और संगठन में आना ही नहीं। परंतु ये तो केवल स्व का कल्याण हो गया, स्व के साथ साथ सबका कल्याण करना है। तो स्व उन्नति के साथ साथ बेहद के उन्नति के आधार मूर्त फिर है 23वीं पुतली। 23वीं पुतली है जिम्मेवारी की पुतली, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाबा ने लिस्ट गिनाई है माताओं की तरफ से। फिर इधर कौन कौन से? कमजोर को शक्तिशाली बनाना। बीच में बाबा ने बहुत सारे चेकिंग के पॉइंट दिए एक जगह पर, कितनों को बनाया, कितना हम, कितनी स्टेप आगे बढ़े, कितनी पौड़ियां आगे बढ़े हैं, स्टेप आगे है, पीछे है, कहां है, कितना बाकी है। तो कमजोर को शक्तिशाली बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी, व्यर्थ वातावरण को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस परिवार की उन्नति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेहद की उन्नति में भी बाबा ने ये वाक्य कहे हैं कि परिवार की, हर ब्राह्मण आत्मा की उन्नति, वो कमजोर शक्तिशाली बने, हरेक को स्नेह और शक्ति का सहयोग दे। दातापन में भी वो बात कही है, यहां पर भी बात कही है, दो तीन जगह अलग अलग बात कही है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि है तो ही इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, आरूढ़ हो सकते हैं सर्वंश त्यागी अर्थात जिम्मेवार। तो ये थे कौन सी पुतली? 23वीं। उसके बाद में 21 और 22 गुणमूर्त और होली हंस। गुणमूर्त में कहा बाबा ने, दूसरों के गुण देखना और क्या करना, ग्रहण करना और धारण करना। और होली हंस में कहा कि अवगुणों को देखना, समझना, परंतु धारण नहीं करना। एक तो है गुणमूर्त अर्थात ऐसी गुण संपन्न दृष्टि और वृत्ति हो जाए जिसमें सब में गुण दिखे, यह है गुणमूर्त बनना। और होली हंस अर्थात कंकड़ को देख रहे हैं, अवगुण दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी अभी जो मुरली चली थी पिछले संडे, क्या करो अगर रॉन्ग देखो तो? साक्षी, शुभ भावना, रहम की निगाह, रहम दिल। तो गुणमूर्त भी बनना है और गुण ग्राहक, गुणमूर्त, गुण संपन्न और होली हंस। तो ये हो गया 21 और 22। फिर उसके बाद में 19 और 20 मास्टर दाता। 19वां मास्टर दाता अर्थात उसके बाद आएंगे। तो 19 और 20 साथ साथ है इसलिए, तो मास्टर दाता की परिभाषा अर्थात फिर से वही बातें बताइए। कमजोर है उसको शक्तिशाली, वायुमंडल को परिवर्तन, परिस्थिति को परिवर्तन। और बेहद की उन्नति में एक और पॉइंट है जो बाबा ने कहा, यदि इस ब्राह्मण परिवार में किसी भी विघ्न कोई आत्मा बनती है तो उस हलचल को अचल करना, ये भी उन्नति के आधार मूर्त बनना है। ये एक पॉइंट उधर भी है। तो यहां पर फिर से आ जाओ, दाता ऐसा नहीं कि ऐसी परिस्थिति हो या कोई दे तब दू, ये दाता नहीं है। मास्टर दाता अर्थात कोई दे या ना दे, हमें देना है, ये भावना। तो मास्टर दाता 21वां और 20वां है अर्जुन। 19 नहीं है, हमने पहले वो बताया था। हाँ, ये 20वां है अर्जुन। जो ओटेसो अर्जुन अर्थात चार परिभाषा बताई है उसमें, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। इनिशिएटिव लेना, पहले मैं करूंगा, पहले मुझे करना है, पहले मुझे बदलना है। यदि कोई नई बात मुरली में आ जाती है कि बाबा कोई चीज को छोड़ने के लिए कहते हैं, हम ये सोचे कि ये बात सबसे पहले मैं करूंगा। जो भी बात हो रोज की साकार मुरली में आ जाती है कि ये तुम्हें छोड़ना है। उदाहरण, तुम्हें किसी से सेवा नहीं लेनी है। यदि शरीर शक्तिशाली है, तंदुरुस्त है, इतने बूढ़े अभी हुए नहीं है, अपने काम खुद ही करना, ये एक उदाहरण है उसका। तो ये 19वां था दाता, और 20वां है जो टेसो अर्जुन। 18वां, हाँ ये गुणमूर्त में भी था। एक बात और पॉइंट रहेगी, बहुत सुंदर पॉइंट है ये भी, होली हंस में बाबा ने कहा है, होली हंस अर्थात अवगुण को न देखने वाला। पर उसमें और एक चीज है, अगर अवगुण दिखे तो अपने गुण की शक्ति से उसे परिवर्तन करे। कितनी ऊंची बात है, अपने गुण की शक्ति से, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार है, अपने गुण की शक्ति से उस अवगुण को परिवर्तन करे। एक तो देखना नहीं, धारण नहीं करना, दिखे समझना, धारण नहीं करना, ग्रहण नहीं करना, परंतु उसके भी ऊपर की स्टेज है, उसको मिटाने के लिए अपनी शक्ति से प्रयत्न करना, अपनी शक्ति से मिटाना। 18वां, विश्व कल्याणकारी। सर्वंश त्यागी अर्थात विश्व कल्याणकारी। तो हे राजा भोज, विश्व कल्याणकारी बने हो। ऐसे तो नहीं कि केवल सेंटर कल्याणकारी है, अपने घर के कल्याणकारी है, अपने गांव के कल्याणकारी है, शहर के कल्याणकारी है, अपने देश के कल्याणकारी भी नहीं, सकल विश्व के कल्याणकारी। अभी चलते हैं मुरली की शुरुआत। तो आज कौन किससे मिल रहा है? आज बाप दादा किससे मिल रहे हैं? महात्यागी बच्चों से मिल रहे हैं, सर्वंश त्यागी बच्चों से मिल रहे हैं, समान बच्चों से मिल रहे हैं, श्रेष्ठ बच्चों से मिल रहे हैं। और इस सिंहासन की सबसे पहली पुतली, 18 हो गए, अभी पहले से चालू करेंगे। सबसे पहली पुतली जो कि आकर खड़ी हो गई हमारे सामने और कह रही है, राजा भोज, संकल्प की पुतली। दो पुतलियां है संकल्प की, एक नहीं, पुतली नंबर 1 एंड पुतली नंबर 2। पहली पुतली संकल्प की कौन सी? साकार में होते हुए भी निराकार, निराकारी सो साकारी। मतलब अशरीरीपन का अभ्यास कितना है, इस देह से डिटैच होने का अभ्यास कितना है। संकल्प में सबसे बड़ा अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने यही किया था, अशरीर होने का। तो संकल्प में पहली पुतली कौन सी? निराकार सो साकार। दूसरी पुत्री संकल्प की, न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड एंड लविंग। लविंग बनने का पुरुषार्थ नहीं है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ करना भी मत। पुरुषार्थ किसका करना है? न्यारे बनने का। और जो न्यारा है वो स्वतः ही प्यारा हो जाता है। शिव बाबा न्यारा है इसलिए सबका प्यारा है। जो जितना न्यारा, डिटैच्ड, अलग, वो उतना स्वतः ही प्यारा बन जाता है। और जो प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनका क्या हाल होता है? वो क्या हो जाते हैं? वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं? वो मोह में फंस जाते हैं। इसका भी प्यारा बनूं, उसका भी प्यारा बनूं, इसकी खुशामद, उसकी खुशामद, इसको खुश करूं, उसको खुश करूं, एक को खुश करो तो दूसरा दुखी होता है। तो प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ कौन सा है? डिटैच होने का पुरुषार्थ है। तो संकल्प की पहली पुतली है निराकारी अवस्था। निराकार सो साकार, निराकारी अवस्था में रहते हुए साकार कर्म करना। दूसरी पुतली है डिटैचमेंट। तीसरी पुतली है बोल की दो पुतलियां हैं, बोल की दो पुतलियां हैं। बोल में निरंकारिता, उसमें पहली पुतली है रूहानी मधुरता और चौथी पुतली है निर्माणता। तो संकल्प की दो और बोल की दो। बोल में क्या हो? मधुरता। वो भी कैसी मधुरता? रूहानी मधुरता, स्पिरिचुअल स्वीटनेस। नहीं तो वो चाटुकारिता के बोल भी मधुर होते हैं, खुशामत करना किसी की, मीठा मीठा बोलना, झूठी तारीफ करना किसी की, वो भी बोल बहुत मधुर होते हैं। परंतु वो वाले नहीं, शब्द विशेषण जोड़ा है स्पिरिचुअल, रूहानी स्वीटनेस, रूहानी मधुरता। और चौथी पुतली है निर्माणता की, बोल में अहंकार ना हो। तो ये चार पुतलियां। उसके बाद में पांच, आठ पुतलियां है कर्मेंद्रियों की। बाबा ने कहा कर्म में क्या बनना है तुम्हें? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। कर्म में क्या बनना है तुम्हें? निर्विकार। तो उसमें पांच, सबसे पहले मस्तक से वरदान देना है, कौन सा? स्वस्वरूप की स्मृति दिलाए आत्मा को। हमें देखकर आत्माओं को क्या याद आए? उनका स्वस्वरूप। परंतु उसके लिए हमें स्वयं अपने स्वस्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, ताकि ये जो मस्तक है इससे दूसरों को उनके स्वरूप की स्मृति आ जाए। पांचवी पुतली, पांचवी, पहली संकल्प की एक, दूसरी संकल्प की, तीसरी बोल की, चौथी फिर बोल की, और पांचवी अब मस्तक। कर्मेंद्रियों के अंदर ये सारे हैं। सातवीं दृष्टि, नयन, छठवीं, सॉरी कोई भी नंबर लगा लो जो लगेगा वो। तो नैनों से क्या करना है? नैनों से क्या करना है? इशारा, नैनों से इशारा दिलाना है। कौन सा? आत्माओं को इशारा दिलाना है घर का और राज्य का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। एक तो इशारा दिलाना, और दूसरा साथ साथ और एक काम करना है, अनुभव कराना है उनको। कौन सा? कि ये मेरा असली घर है, ये मेरा राज्य है और ये मेरा असली घर है। ये करने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें पहले ये अनुभव हो जाए कि ये मेरा असली घर है। हमें लग रहा है ये मेरा असली घर है दुनिया, और हम दूसरों को सिखा रहे हैं कि वो तुम्हारा असली घर है, तो तीर कैसे लगेगा? हम धरती को पकड़े हुए हैं पक्का, और दूसरों को कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, घर तुम्हारा उधर है, उसको याद करो। तो कर्मेंद्रियों में सबसे पहले मस्तक, दूसरा नैन, तीसरा मुख। मुख में दो है, मुख में दो बन को दो कर दो। सबसे पहले रचता और रचना के विस्तार को जान, अर्थात इसको जानना, रचता को भी और रचना के विस्तार को। ये पहली पॉइंट उसमें, और दूसरी पुतली उसमें ही पहली रचना ब्राह्मण सो देवता बनने के वरदानी, या वरदान लेना। हर चीज में जितनी पांच कर्मेंद्रिया पांचों चीज की बात की है, पर हर एक में बाबा ने वरदान से जोड़ा है, महादानी और वरदानी, ये देना, ये मुख का। फिर हाथों का, हस्तों से क्या करना है? इसमें फिर से दो पुतलियां, पहली सहज योगी और कर्म योगी बनाना, ऐसे कर्मधारी, और दूसरा दूसरी आत्माओं को वरदान देना श्रेष्ठ फल प्राप्त करने का, श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त करने का। ये दो हो गए उसमें। फिर उसके बाद में पैरों में और दो, पैरों से क्या करना है, एक तो फॉलो फादर और दूसरा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करना। तो ये टोटल 8 पॉइंट्स है यहां पर, मस्तक, नैन, दो हाथों के, दो मुख के, दो और मुख के, दो हाथों के, दो और पैरों के दो, तो टोटल हो गए 12। अभी हमको और 5 चाहिए। यहां पे बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म बात कही है कि कर्मों में विकारों का अंश भी ना हो। 5 बातें यहां पर है। सबसे पहले मनसा, वाचा, कर्मना, संबंध और संपर्क। यहां पर पहले वाचा की बात तो कही थी, परंतु वहां वाचा पहले दूसरे अर्थों में कहा था, यहां बाबा कह रहे उसमें विकार का अंश ना हो। कर्म में इसका विस्तार नहीं किया है, वाचा में उसका विस्तार यहां नहीं किया है, परंतु पहले थोड़ा कहा है। तीसरा, कर्म में, वाचा में, संकल्प में, संबंध में और संपर्क में, ये 5 पॉइंट। उसमें विस्तार बाबा ने किया है भाषा में, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाषा के लिए क्या कहा बाबा ने, ब्राह्मणों की डिक्शनरी, रॉयल भाषा, कौन सी है वो, मैं राइट हूं, मैं यथार्थ हूं, और क्या करते हैं, साइकोलॉजी की एक डीप फिलोसॉफी की बात यहां पर है, खुद की कमजोरी को छिपाते हैं, खुद को सिद्ध करते हैं, दूसरों की कमजोरी को स्पष्ट करते हैं या दूसरों की कमजोरी को सिद्ध करते हैं, विस्तार करते हैं, ये चतुराई करते हैं। बाबा ने इसे कहा मनमत के बोल। क्या कहा इसे, मनमत के बोल। एक होमवर्क सभी ले सकते हैं, मनमत की डिक्शनरी, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, मनमत की डिक्शनरी, कौन कौन से शब्द, दो तो बाबा ने सुना है, मैं राइट हूं, मैं यथार्थ हूं, इस तरह से और क्या क्या चिंतन किया जा सकता है कि जिसे हम कहेंगे ये मनमत की डिक्शनरी है। फिर है संबंध संपर्क, संबंध में और संपर्क में भी विकार का अंश न हो। यदि हमारे जो भी संबंध है, यदि एक आत्मा भी है ऐसी संसार में जिसके प्रति विकार का भाव है, यदि एक आत्मा भी ऐसी है, बाकी सबसे बहुत अच्छे संबंध है, परंतु एक है, जैसे वो स्वामी रामातीर्थ का हो गया था, एक से लगाव था, वो उनको भी नहीं पता था है, वो तो जब सामने आई तब पता चला कि ये भी कोई लगाव है, परंतु उसको भी जीत लिया। फिर जितनी आत्माएं हमारे संपर्क में है, हमारे संबंध में है, अपने संबंध को चेक करना है, क्या उस संबंध में डिटैचमेंट है, क्या उस संबंध में प्यूरिटी है, क्या विकार का कोई अंश तो नहीं, यदि है तो वो सर्वंश त्यागी नहीं हुए। तो हे राजा भोज, इन पांचों में से किसी भी एक बात में, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, विकार का अंश यदि है तो तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो टोटल ऐसी कितनी हुई, 32 पुतलियां। फिर से रिवाइज करेंगे, फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। सबसे पहले से चालू करते हैं। अब शुरुआत हमने नीचे से की थी, अभी ऊपर से चालू करते हैं। पहला, संकल्प में सभी बताएंगे क्या क्या, निराकारी सो साकारी। दूसरा, संकल्प में न्यारे और प्यारे। तीसरा, बोल में रूहानी मधुरता। चौथा, बोल में निर्माणता। पांचवा, मस्तक। मस्तक से क्या, स्वरूप की स्मृति दिलाए। छठवा, नयन से क्या करना है, इशारा और अनुभव, किसका, घर का और राज्य का। सातवा, मुख द्वारा, मुख से क्या करना है, रचता रचना का ज्ञान। और आठवा, उसी मुख से ब्राह्मण सो देवता, यह पहली रचना, इसके वरदानी या महादानी, फिर आठवां हस्त, हस्त आठ और नौ, हाथ के दो। हाथ से क्या करना है, कर्मयोगी बनाना किसी को, यह चिंतन का विषय है। कैसे, कर्मयोगी और सहज योगी और स्वयं कर्मधारी। और नौवां हाथ का ही, हाथ का ही, हाथ का ही, श्रेष्ठ कर्म के फल के वरदानी, श्रेष्ठ कर्म के फल के वरदानी। अगला चरण, उसमें दो, फॉलो फादर और पद्मों की कमाई जमा करना। तो ये हो गए बारह। फिर है पांच, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क, इसमें विकारों का अंश ना हो। अठारहवा विश्व कल्याणकारी, उन्नीसवा मास्टर दाता, बीसवा अर्जुन, मतलब इनिशिएटिव लेना हर कर्मों में, हर कार्य, चाहे पुरुषार्थ का कार्य हो, सेवा का कार्य हो, योग का हो, कोई भी नया कार्य हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे मधुबन का हो, चाहे इस योगी और ब्राह्मण जीवन के किसी भी कार्य में क्या करना, इनिशिएटिव लेना। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में 21 और 22 होली गुणमूर्त और होली हंस, 23 और 24 23 जिम्मेवारी, 24 बेहद के उन्नति के आधार मूर्त, 25 एक रस एक मत एक परिवार का एक कार्य, 26 संपन्न वृक्ष, अविनाशी वृक्ष, और जिसमें संपन्नता और जिसमें इच्छा मात्रम अविद्या, एक ही साथ है सब कुछ, 27 स्वयं का भोग लगाना, 28 पंछी बरकर उड़ना, डालियों को नहीं पकड़ना, 29 मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, 30वीं पुतली कमलासन, 31 तपस्या, और 32 जीते जी मरना। तो सारी की सारी पुतलियां हमें देखकर खुश हो जाए और हमें कहे कि आओ बैठो सिंहासन तैयार हो, तो क्या ऐसे हम तैयार हुए हैं कि सारी पुतलियां और स्वयं इस जिसका ये सिंहासन है वो, और वो शिव बाबा, सभी कैसे हो जाए, सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ऐसे वो चरवा जिसका नाम चंद्रभान था, उसकी कोई बात कहीं पर वर्णन नहीं है, परंतु सिंहासन 32 और विक्रम वेताल बहुत प्रसिद्ध है राजा विक्रमादित्य के लिए, उसी के द्वारा उसकी बहुत सारी महिमा सुनाई जाती है कि कैसा वो श्रेष्ठ था, महान था। जितने सम्राट हुए हैं, सम्राट तो बहुत हुए हैं भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, परंतु इन सभी में विक्रमादित्य की जो महिमा है वो कुछ और है। कहीं पर भी जीवन में कोई भी कहां पर भी कलंक नहीं है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस पर भी कोई एक क्लास है कि जिसमें विक्रमादित्य सर्व सम्राटों में से श्रेष्ठ कैसे है, उस पर पूरा किसी ने विस्तार किया है। उसके पहले भारत का प्रथम सम्राट तो चंद्रगुप्त मौर्य था, विक्रमादित्य तो ईसा के 50 या 100 वर्ष पूर्व है, परंतु फिर भी सभी महान सम्राटों में वो सर्व महान है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। तो ऐसे क्या अभी बताओ, ऐसे क्या आप बताएंगे, इस बार हम नहीं बताएंगे, ऐसे 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 बाप समान, निराकारी निर्विकारी निरंकारी आत्माओं को, ऐसे सर्व अंश त्यागी आत्माओं को, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे प्रत्यक्ष फल संपन्न आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे हर कर्म में विकार का अंश भी जिन्हें स्पर्श न करे ऐसी आत्माओं को, ऐसे उड़ता उड़ती कला में उड़ता पंछी ऐसी आत्माओं को, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।